ओम शांति। आज की भट्टी की शुरुआत का दिन सभी का बहुत बहुत अच्छा रहा और हमारे बीच आज विशेष पावरफुल क्लास कराने के लिए, क्लास कहें या आप सब से मिलने के लिए, हमारी बहुत वरिष्ठ दीदी राजाओं की नगरी से स्वराज्य अधिकारी एकदम राजा स्वरूप आत्मा आदरणीय सुषमा दीदी पधारे हैं। सभी एक हाथ की ताली से अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। आदरणीय सुषमा दीदी वर्तमान समय जयपुर में रहते हुए विश्व भर में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। जब हेडक्वार्टर में ही आपका बहुत सक्रिय योगदान है तो सहज बात है कि यहीं से प्रतिदिन विश्व कल्याण की सेवा हो रही है। इसके अतिरिक्त भी आपने विदेशों में जाकर भी बहुत बाबा की सेवा में अमूल्य सहयोग दिया है। बहुत छोटी आयु में, बचपन में ही, लगभग 6 वर्ष की आयु में ही आप अपने माता पिता के साथ अंबाला शहर में, अंबाला में पधारे, ज्ञान में आए और उस ज्ञान को समझा। छोटी आयु में 1960 में ही मम्मा से आपका मिलना हुआ। उनके जीवन की रूहानियत, सादगी, उसकी अमिट छाप आपके जीवन पर आ गई। वैसा ही अनुशासन प्रिय, शक्तियों से भरपूर, सादगी पूर्ण, बहुत स्पष्ट और बहुत सरलता से अपनी बात शक्तिशाली रूप से पेश करना यह आपकी विशेषता है। जब भी आप उनकी क्लासेस सुनेंगे लगता है कि धारणाएं मजबूत करने में आपका बहुत योगदान है कि हर एक ब्राह्मण बच्चा बहुत धारणा स्वरूप और बाबा के अनुशासन को समझकर अपने की आंतरिक इच्छा इसमें प्रकट होती है। आदरणीय दीदी 1963 में पहली बार बाबा से मिले मधुबन में ही और 19 वर्ष की आयु से ही आप विश्व सेवा में समर्पित हो गए। आप सोचिए इतने वर्षों में आपने भारत के कोने कोने में जाकर और विदेशों में अपनी सेवाएं प्रदान की। बिजनेस विंग के आप जोनल कोऑर्डिनेटर हैं और यहाँ हेडक्वार्टर में ही आंतरिक प्रशासन, मैनेजमेंट की, प्रबंधन की आप विशेष सेवाएं संभालते हैं और इसी विशेष ग्रुप में आप मेंबर हैं। सब तरह की सेवाएं संभालने में आदरणीय दीदी हमारी वरिष्ठ दीदियों में बहुत बहुत प्यार से, बहुत अच्छी तरह अपनी बात को समझाने वाले, एक एक ब्राह्मण बच्चे के जीवन में रोशनी भरने वाले ऐसे आदरणीय सुषमा दीदी जिसे आप हम सुनेंगे। दुआओं का खजाना, संकल्पों का खजाना, ज्ञान का खजाना, इतने खजाने जो बाबा ने दिए हैं उससे अपने आप को भरपूर कैसे रखें। आदरणीय सुषमा दीदी जी,
ओम शांति। पुरुषोत्तम संगम युग पर अपना संबंध परमात्मा से जोड़ने वाले, परमात्मा को पहचानने वाले और जन्म जन्मांतर का अपना भाग्य सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च बनाने वाले आप सब बाबा के बच्चों का बाबा के घर में बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। बाबा के घर में हम जब बाबा के बच्चे आते हैं बहुत से संकल्प लेकर आते हैं, आप भी बहुत से संकल्प लेके आए होंगे। कईयों ने तो सोचा होगा इस बार जाएंगे ना तो योग मेरा अच्छा लगे, कोई सोचेगा बस बाबा बाकी सब हिसाब किताब तो ठीक है, लेकिन मेरा व्यवहार सबके साथ मीठा हो, बोल मीठा, तो कुछ तो बाबा के ऐसे बच्चे हैं जो अपने लिए सोच के आते हैं और कुछ थोड़ा उलाना भी दे देते हैं। बाबा मैं कहां फंस गई, कैसे परिवार में, कैसे लोगों में, मेरा यही हिसाब किताब है। तो अपना एक एक सेकंड शिकायत और रोने में ही बिता देते हैं। कोई बीमार होगा वो सोचता है बाबा बस मेरा तन ठीक हो जाए ना, मैं आपको दिन रात याद करूंगी। तो बाबा से टाइम टू टाइम हम लोग सौदाबाजी करते रहते हैं। विचार कीजिए, सर्वशक्तिवान मुझ आत्मा का पिता है, तो पिता के साथ क्या चाहिए, क्या चाहिए? सौदाबाजी, कंडीशन, या बाप के आज्ञाकारी बन जाए, जो जो चाहते हैं बस बाबा हमें कुछ नहीं चाहिए, आपने सब कुछ दिया है। बहुत से भाई बहन ऐसे ही हैं, कहते बहन जी बाबा ने सब कुछ बहुत दिया है, मकान भी है, बच्चे भी सेट हैं, धंधा भी अच्छा है, फिर कष्ट क्या है? बस योग नहीं लगता, संकल्प विकल्प बहुत चलते हैं। ज्ञान में आने से सबसे पहला पहला वरदान भगवान का हमें यही मिलता है, भले ज्ञान से पहले भक्ति में भी हम कहते थे तमेव माताश्च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, कहते थे, पर कैसे मात पिता है, बंधु सखा है, सर्वम मम देव देव है, देवों का भी देव है, ये हमें पहचान नहीं थी। अब बाबा कहता है बच्चे तुम मुझे याद करो और कैसे बन जाओ, कौन सी प्राप्ति हमें हो? इच्छा मात्रम अविद्या, कोई इच्छा नहीं है। सब ये कहते हैं ना बाबा ने बहुत दिया है, सब कुछ दिया है। अगर किसी को बाबा से शिकायत है तो जरा हाथ उठाओ जो कहते नहीं बाकी तो सब ठीक है, ये नहीं है। है किसी को शिकायत? एक भाई जी ने हाथ उठाया, क्या शिकायत है भाई जी आपको? गीता पाठशाला और सेंटर की बात नहीं करनी है, अभी तो बात है मेरे अपना भाग्य बनाने की। इस पर मैं आपको एक बात सुनाती हूं, हमेशा सुनाया करती हूं। जब मैं आत्मा ये शरीर छोड़ के जाऊंगी तो बाबा से सलामी तो करेंगे या नहीं करेंगे? मिलेंगे ना, बाबा मुझे कहेगा आओ मेरी बच्ची आओ, फिर बाबा मेरा थोड़ा हिसाब भी देखेगा, पन्ने पलटे जाएंगे, बच्ची तुमने क्या क्या किया? बाबा मैं बचपन से आपकी बन गई, मैंने 50 सेंटर खोले। बाबा कहेगा अच्छा सेंटर खोले किसके? बाबा के। सेंटर किसके हैं, किसके हैं? पक्का बाबा? मैंने जो है ना 60 कन्याएं निकाली, वो किसकी हैं, वो किसकी हैं? बाबा मैंने जगह जगह जाके भाषण किए, सेंटर खोले, गीता पाठशालाएं खोली। बाबा कहेगा अच्छा वो किसका है? सब बाबा का। तुमने अपने लिए क्या किया? बाबा फुर्सत ही नहीं मिलती थी, सारा दिन सेवा के लिए भागते थे, दिन में भी आराम नहीं करते थे, रात को थक जाते थे, 10 बजे सोते थे, फिर अमृत वेला। तो बाबा कहेगा ये तेरी असली कमाई तो ये थी, ये तो तुमने की नहीं, कितने नंबर देगा मुझे। फिर बाबा कहेगा अच्छा चल कोई बात नहीं बच्ची, चलते फिरते तूने याद किया, बैठ के योग नहीं किया, चलो यहां भी बाबा मुझे कंसेशन देगा। अच्छा बच्ची व्यवहार, बाबा सबको चलाना तो पड़ता था ना, मानते नहीं है अगर ऊंचा ना बोलो, सुनते ही नहीं है। तो बाबा कहेगा अच्छा बच्चे फिर जमा हुआ माइनस हुआ, मैं क्या कहूंगी फिर, मैंने कड़वा बोला तो मेरा जमा हुआ या माइनस हुआ। बाबा बोलना ही पड़ता था, नहीं तो सुनते ही नहीं थे। बाबा ने कहीं ये कहा है कि सुने तब तुम मीठा बोलना, बाबा ने तो कंडीशन लगाई नहीं, बाबा ने तो कहा तुम्हें मीठा बोलना है बच्चे, मीठा बोलो, मीठा व्यवहार करो। या बाबा ने कहा जब सुनो तब, कोई तुम्हारी बात सुनेगा तब मीठा बोलो। तो इसलिए मैं बहुत बहुत दिल से सत्कार करती हूं उन भाई बहनों का भी, जिनको हर घड़ी ये संकल्प है बाबा की सेवा कैसे हो, कैसे ठीक करें, कैसे अच्छी करें, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन उससे पहले मेरा बोलचाल, मेरा व्यवहार, मेरा लेन देन, मेरी दृष्टि वृत्ति, ये सब किस लेवल की है, ये तो भाई मेरे सेंटर का है, ये फलाने का है, ये बहन तो हमारे सेंटर की है, बताइए मेरे को बाबा कितने नंबर देगा। तो प्यारे भाई बहनों, हम कहीं भी छूट नहीं सकते हैं। इसलिए आज से पहली पहली बात तो यही पक्की करनी है, ना मेरा सेंटर, ना मेरे भाई बहन, ना मेरे निकाले हुए समर्पित कराए हुए भाई बहन, जब तक हम ये मेरा मेरा करते रहेंगे, इसमें जकड़े रहेंगे, तो आत्मा तो स्वतंत्र हुई नहीं, फिर मिलेगा क्या। जो बाबा कहता है फिर अंत में पश्चाताप। और सबसे बड़ी बात, गहरी बात, ज्ञान से पहले मैंने किसी को गाली निकाली, मुझे भी वो एक निकालेगा, दोनों बराबर। मैंने चमाट लगाई, उसने भी लगाई, उसने नहीं लगाई तो किसी और ने लगा दी, तो भी हिसाब बराबर। बाबा के बनने के बाद हिसाब क्या है, क्या हिसाब है, एक का 100 गुना, अच्छा करो या बुरा करो। मैंने थोड़ा सा कड़वा होकर आपसे बोला एक ही बार, अब मुझे कितनी बार सुनना पड़ेगा, कितनी बार सुनना पड़ेगा, 100 बार। एक का 100 का हिसाब है। अभी मैंने चलते चलते, भीड़ थी, किसी एक को ऐसे धक्का लगाया, अब मुझे कितनी बार धक्का लगेगा। ये तो 100 तो हमारी मिनिमम बोली है, और अगर मुझे आया उसमें भी गुस्सा और मैंने जरा और जोर से धक्का लगाया, मेरी भावना, मेरी स्थिति, मेरा एक्शन सब का 100 100 100 मल्टीप्लाई करते जाओ, कितना गुना हो गया, लाखों गुना प्राप्ति है और लाखों गुना हम गवाते हैं। तो ये जो आज बात है, हमारा विषय है खजाने, हम खजानों को जमा करें। तो सबसे बड़ा खजाना कौन सा है, कहेंगे ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, फिर भी इनमें भी सबसे बड़ा खजाना वो है समय का खजाना। मेरा एक एक सेकंड क्या हो, सफल हो। सवेरे से लेकर अभी 6:15 हो रहे हैं, मान लो मैं 5 बजे उठी, जल्दी भी नहीं उठी, 13 घंटे हो गए, 13 घंटे में मैंने कितने खजाने जमा किए, अपना अपना हिसाब निकाल लो। तो पाएंगे कि हम जमा तो कुछ करते ही नहीं हैं, कुछ नहीं करते हैं, बुरा नहीं मानना। मैंने आज नाश्ता किया बाबा की याद में, या आलू के पराठे बने थे तो अरे एक और ले आना। लोभ वश, कर्म इंद्रियों वश, किसी को मैंने बोला, किसी से तो मैंने बहुत मीठा बोला, मेरा इससे काम था, बहुत प्यार से, हाँ पर आप मेरा ना ये काम कर देना। मीठा कैसे बोला, कंडीशनिंग है, मेरा स्वार्थ है, और जहां स्वार्थ नहीं है वहां भाई बहन सुनते हो नहीं सुनते हो, कितना जमा हो रहा है। तो ये जो सूक्ष्म कहानी है जमा होने की, कई बार हम कहते हैं कोई बात हो जाती है, अरे हम तो बाबा के इतने पुराने बच्चे हैं, योग भी लगाते हैं, बाबा को भोग भी लगवाते हैं, मधुबन में भी लगाते हैं, सेंटर पर भी, बहन जी हमें जो कहे हम तैयार, फिर भी हमारे साथ पता नहीं ऐसा क्यों। वो क्यों का ये है, अंदर में सूक्ष्म हिसाब, वो है मेरा भाव और भावना, वो कितनी श्रेष्ठ है। तो वर्तमान समय में हम सब बाबा के बच्चों को सबसे बड़ा खजाना समय, और समय तब हमारा सफल है जब मेरी भाव और भावना दोनों एकदम श्रेष्ठ, चाहे मुझे कोई गाली निकाल रहा है, चाहे धक्का दे रहा है। मान लीजिए कोई भाई बहन आज पहली बार मिल रहे होंगे, कहेंगे बहन जी बहुत अच्छा क्लास था। तो क्लास तो अच्छा था, फिर मेरा व्यवहार कैसा है, और कहीं व्यवहार में देख लिया यहां तो बहन जी आज जरा उखड़ी हुई हैं, बताओ मेरा क्या जमा हुआ। तो अब हमारे अंदर ये एक लगन लगनी चाहिए, खजाने जमा करना माना एक एक सेकंड और एक एक भाव भावना जमा हो। एक भी भावना मेरी वेस्ट नहीं की, अरे ये तो ऐसी है इसको मैं बताऊंगी, गया सब। क्योंकि जब हम कोई नेगेटिव बात करते हैं ना, इतना फोर्स से करते हैं, उसमें हमारा तन मन धन शक्ति स्वास्थ्य सब लग जाता है, और यहां तक मैंने इतना बोला धीरे से पर इतना फोर्स से, देखना अब मैं इसको पाठ सिखाऊंगी, वातावरण वायुमंडल सब बिगाड़ दिया, अब सबका 100-100 मल्टीप्लाई करते चले जाओ, मैंने क्या जमा किया। तो अब जबकि अंतिम घड़ियां आनी है या आ गई, क्या विचार है भाई, आ गई या आनी है अभी भी? अभी तो बहन जी बहुत टाइम है, ऐसे तो लड़ाइयां होती रहती हैं बहने। अब ये ना सोचना ऐसे तो लड़ाइयां होती हैं, कौन सी बड़ी बात है, वो इजराइल में हो रहा है, इराक में हो रहा है। एक बार अव्यक्त बाबा मधुबन में जो वो मेडिटेशन हॉल है उसमें आए हुए थे, मैं भी वहां बैठी, मैं छोटी थी मगर जैसे छोटी बहनें बैठ जाती हैं, मैं भी वहीं बैठी थी। किसी एक ने पूछा क्योंकि वो घटना तो मुझे याद नहीं, पर कहीं कुछ भारत में भी कोई घटना हुई थी, पता नहीं कहीं कोई बाढ़ वाड़ थी या कुछ ऐसा था। तो उस बहन ने पूछा, बाबा इसी को हम ये समझेंगे कि विनाश शुरू हो गया? बाबा ने इतना क्लियर उसमें कहा था कि बच्चे ये विनाश नहीं है, कहीं अर्थक्वेक आ रहा है, कहीं फ्लड आ रहा है, कहीं थोड़ा आपसी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये विनाश नहीं है। विनाश क्या है? जब सब कुछ इकट्ठा शुरू होगा। आज भी मुझे बाबा के वो महावाक्य याद है, सब इकट्ठा, सब इकट्ठा माना नेचर पूरे जोर शोर से, आप देख लीजिए नेचुरल क्लेमिटीज कितने जोर शोर से हैं, केवल अमेरिका में नहीं। ऐसा नहीं कि अमेरिका में, वहां लॉस एंजलिस में आग लगी है, आप देखिए और सब जगह भी, आप इंडिया में भी देख लीजिए मौसम, प्रकृति भी चालू हो जाएगी और लोगों का आपसी माहौल क्या है, कितना भय का वातावरण है। आप कहीं भी बाहर जाओ लगता है पता नहीं लौट के आएंगे नहीं आएंगे। आगे ऐसा नहीं होता था, बाहर का वातावरण तो छोड़िए, आज तो परिवार में भी दो भाई बहन उनकी भी नहीं बन रही है, पति पत्नी की नहीं बन रही है। एक परिवार बाबा के घर से जुड़ा हुआ भाई आया तो मैंने पूछा कैसे हैं आप, ठीक हैं आपकी बहन? कहता बहन जी मैं अपनी उस बहन के घर में तो जाता ही नहीं हूं। मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने कहा क्यों? वो जरा पैसे वाले घर में चली गई है ना, उसको अपना अभिमान बहुत है, मेरे पास थोड़ा कम है। आगे ऐसे होता था, भाई बहन पैसा देखते थे, भाई बहनों का आपस में कितना प्यार होता था, आज हमारा प्यार पैसे पे तुल रहा है। आप दुनिया का वातावरण देखिए, कल्प वृक्ष में ऊपर जो दिखाया है, एक तरफ सिविल वॉर, जैसे वो कहते हैं ना अंदर ही अंदर आग सुलग रही है, पता नहीं वो कब भभका उठेगा। कहीं भी आप देख लीजिए, इंडिया की बात नहीं है, कहीं भी देख लीजिए। फिर नेचुरल क्लेमिटीज, वो भी आप देख लीजिए सब जगह विश्व भर में, और एटॉमिक वॉर तो तैयार, अब पता नहीं किस दिन कौन उठाएगा और बटन दबाएगा। तो इसलिए हम बाबा के बच्चों को अभी बहुत बहुत साइलेंट होकर अपने पुरुषार्थ में लग जाना है और हर घड़ी ये गिनना है, मेरी जेब में कागज के नोट हैं या नहीं है कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब के नोट भी जीरो ही होने वाले हैं, पता नहीं किस दिन डिमोनेटाइजेशन हो जाए तो बस खेल खत्म। कौन सी करेंसी चला दें, खेल खत्म। लेकिन हर घड़ी मेरा ये सेकंड कैसे गया, क्या मैं इतना अलर्ट अपने अंदर में हूं, मेरा ये सेकंड ये श्वास कहां गया, मैं बाबा के साथ हूं। तो एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा हुआ है, बच्चे दो बातें याद रखो। टाइम टू टाइम यूं तो बाबा ने बहुत से हमें विधियां सिखाई हैं, एक में बाबा ने कहा, एक तो बच्चे चलते फिरते हर घड़ी वाह बाबा वाह बाबा वाह बाबा, दूसरा वाह मेरा भाग्य, मेरी तकदीर की तस्वीर। अगर मैं आपसे पूछूं, चाहे भाई चाहे बहनें, क्या आप सबने अपनी भविष्य की तस्वीर बनाई है, मैं क्या बनूंगी? किस किस ने बनाई है? हैं थोड़े भाई बहन, बधाई है आपको, मैंने बनाई है मेरा भविष्य कैसा होगा। अपने अपने भविष्य की तस्वीर रोज बनाइए। अगर मैं बना ही नहीं रही हूं, ठीक है, बाबा को याद कर लेते हैं, बाबा मैं तेरी हूं, ये वाली याद नहीं चाहिए। तेरी हूं तो क्या हुआ, बाबा कहता अच्छा बच्ची आगे मेरी है, बाबा तो मानता ही है तू मेरी है, फिर आगे बाबा का हर बच्चा इस समय जिम्मेवार है बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए। संसार में आवश्यकता है सबको, जो बाबा ने कहा बच्चे अंत में देखना आएंगे लोग कहेंगे बस हमें तो आशीर्वाद दीजिए, सबको शुभ भावनाओं का दान अभी से दीजिए। हम योग में बैठे हैं, ऐसे नहीं बैठ गए हाँ मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं शिव बाबा के सामने हूं, ये योग नहीं है। ये तो हमारा वही हाल है, ए फॉर एप्पल बी फॉर बैट। कितने सालों से आपका बच्चा स्कूल जाए, 2 साल 3 साल, इससे आगे बढ़े ही नहीं, तो आप टीचर को पूछेंगे ना कि क्या बात है ये बच्चा आगे कुछ सीख ही नहीं रहा है, बुक पढ़ना तो सीखे, आगे कोई शब्द वोकैबुलरी तो इसकी बढ़े। तो चलो उसकी टीचर ने एक पोइम सिखा दी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, फिर कहेंगे इसके आगे कुछ नहीं सीख रहा है। हम 10 साल से ज्ञान में हैं, 5 साल से हैं, 20 साल से हैं, 40 साल से हैं, मैं शुद्ध आत्मा शिव बाबा के सामने हूं। राइट है, राइट है, क्या विचार है आप सबका? मैं तो अभी उसी क्लास में बैठी हूं, जब आज भी कोई कोर्स करने आते हैं, बहनें कराती हैं, वो यही कहती है ना, आप महसूस कीजिए कि मैं शुद्ध आत्मा हूं और शिव बाबा के सामने हूं। आज वाला भी यही अभ्यास कर रहा है, 10-20-30 साल वाला भी यही अभ्यास कर रहा है, तो अंतर क्या हुआ? और बाबा ने हमें कहा तुम विश्व कल्याणकारी हो, विश्व परिवर्तक हो, हम वो कब बनेंगे? तो अब हमारा योग, जो बाबा ने कहा तुम ज्ञान सूर्य हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो, जहां ज्ञान सूर्य है वहां अंधकार होगा। मास्टर सर्वशक्तिवान हो कौन सी कमजोरी होगी, लेकिन ये तब हमें प्राप्ति होगी जो भक्ति में भी कहा है सिमर सिमर सुख पाओ, तब हमारे विघ्न कलह क्लेश सब मिटेंगे। ये ना कहो अमृत वेला भी करती हूं करता हूं फिर भी मेरी तो तबीयत ही ठीक नहीं रहती है। अभी आप आए हैं मधुबन में, आज से आपकी ये भट्टी भी शुरू है, अभी ये 3 दिन 15, 16, 17, 18 को बाबा है, 4 दिन मेरा एक भी श्वास व्यर्थ नहीं जाएगा, खाली मौन, मैं चुप हूं, बात नहीं कर रही हूं, लेकिन मेरे संकल्प कौन से चल रहे हैं। हमारे अंदर गुणों की धारणा तब होगी जब मेरे संकल्प श्रेष्ठ होंगे। हर संकल्प में मैं पूरे विश्व को शुभ भावना का दान दे रही हूं, चाहे वो मेरा पड़ोसी है, बिजनेस में भागीदार है, रिश्तेदार है, मामा चाचा काका है, वो स्टूडेंट है या टीचर है, मैं सदा ऐसे विश्व कल्याणकारी हूं। बहुत सी मुरलियों में बाबा ने कहा बच्चे विश्व कल्याणकारी बनकर बैठो, तो हमें तो याद ही नहीं रहता है कि मैं विश्व कल्याणकारी हूं। 2 मिनट 3-4 बार कह भी लेंगे मैं विश्व कल्याणकारी हूं, मास्टर विश्व कल्याणकारी हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, फिर वो पता नहीं कहां गया सर्वशक्तिवान और कहां गया कल्याणकारी। एक हमारे अंदर जो बाबा ने कहा है ना, ये धुन पक्की हो जाए। 3 दिन 4 दिन का समय बहुत लंबा समय है, आज और अभी से ये पक्का करो। खाना खाते भी बाबा वाह बाबा वाह बाबा वाह बाबा। मैं आत्मा कितनी भाग्यवान हूं जिसे ब्रह्मा भोजन मिल रहा है, जिसके लिए देवताएं तरसते हैं। हमें याद है हम लोग छोटे थे, मधुबन में आते थे, और मधुबन में जहां वो रजाइयां वगैरह रखते हैं, टेलीफोन एक्सचेंज बना हुआ है, पहले वहां ही किचन था, वहीं हम लोग खाना खाते थे। एक बार थाली में खाना ले लिया, मुझे 2 रोटी खानी है, 3 खानी है, दाल सब्जी ले ली, बस साइलेंस में बैठ के खाओ, बोलना नहीं। अभी तो हम पहले थोड़ा ले लेते हैं, फिर कुछ जरा मेरे टेस्ट का बना हुआ है, आज दाल अच्छी बनी है, आज सब्जी, ए तुम ला रही हो ना, मेरे लिए भी जरा 1 कटोरी दाल और ले आना। अब मैंने ये जो लोभ वश खाया, ये कौन से अकाउंट में जाएगा बताइए? हम सबको मालूम है मैं कितनी रोटी खाती हूं, जितनी चाहिए ले लो ना, बाबा उसके लिए मना नहीं करते। लेकिन अगर हम चाहते हैं हमारा मन बुद्धि शक्तिशाली बने, उसके लिए अन्न की कंजप्शन जो है बहुत कम होनी चाहिए। सारे दिन में 1 बार 1 रोटी 2 रोटी खाई बस। पंजाब हरियाणा में रहते हो, इतना फल और इतना सब कुछ है वहां, सब्जियां खाओ, फल खाया, सब्जी खाई, सलाद खाया, बस। जो कई पूछते हैं हमेशा जब भी हम कहीं जाते हैं ना, बहन जी योग में बैठते हैं ना नींद बहुत आती है। भाई नींद तो आएगी, सवेरे भी पराठे, दिन में भी अच्छी तरह रोटी सब्जी दाल, रात को भी। सब भाई बहन जो अच्छा पुरुषार्थ करना चाहते हैं, आप यहीं से एक प्रयोग करके देखिए। मुझे 6 बजे भोजन खा लेना है, 7 बजे तक फिनिश, बस। आप कहेंगे अब बहन जी 6 से 7 तो आपका क्लास ही हो रहा है, 6 बजे क्लास में खा के आओ। और अगर नहीं खाया है, आज भी जाके खाना है, थोड़ी सी सब्जी थोड़ी सी दाल ले लो, बस, नो रोटी, थोड़ा सा खाया बाबा की याद में। आप देखिए आपको कितनी अच्छी नींद आएगी, सवेरे कितना अच्छा योग लगेगा। ये शरीर भी आपको कॉपरेट करेगा। अभी तो हम इसी बेचारे की शिकायत करते रहते हैं, बाबा कहता है ये बहुत वैल्यूएबल है संगम पर। अब सारा टाइम क्या करूं, टांग में दर्द है, क्या करूं, यहां दर्द है, मेरा ना सिर में बहुत दर्द, बेचारे की शिकायत ही शिकायत। कभी हमने, हमारी ध्यानी दादी थी ना, हम लोग अम्बाला में ज्ञान में आए, ध्यानी दादी लास्ट के दिनों में यहां मधुबन में ही रहते थे, हम भी कई बार आते थे, ध्यानी दादी के कमरे में ही रहते थे। तो ध्यानी दादी हमें, क्योंकि वो तो हमें वही छोटा रूप देखती थी, ध्यानी दादी कहती थी सवेरे सवेरे उठते हो ना तो ये घोड़ा है तुम्हारा, घोड़े को कैसे चलाया जाता है, जब मालिक आता है ना वो घोड़े की पीठ पे हाथ फेरता है, घोड़ा फुरफुराता है, फिर वो सारा दिन चलता है। तुम भी इसको, ये घोड़ा बहुत अच्छा है। अब सारा टाइम क्या करूं, मेरे पांव में ही बहुत दर्द है, कल मेरे को चोट लग गई, हर टाइम इस बेचारे की शिकायत, ये मुझे क्या सहयोग देगा? अरे बैठे क्या, बैठते हैं ना बस पांव ही सो जाता है, फिर उसकी शिकायत। हम कहां खुश होते हैं, कहाँ होते हैं बताइए, पूछिए अपने से, क्या हम सर्दी में खुश हैं? आप सब पंजाब हरियाणा से आए हैं, हिमाचल, उधर तो कितनी ठंड है, यहाँ तो अब थोड़ा मौसम बिगड़ा, वरना यहाँ मौसम कितना अच्छा था, कहेंगे अरे यहाँ तो गर्मी है, यहाँ ठंड है ही नहीं, अब बहुत ठंड है, बहुत ठंड है, क्या करें, वो ठंड से भी शिकायत, फिर गर्मी होगी तो गर्मी से शिकायत, फिर बरसात होगी, क्या किच किच कपड़े भी नहीं सूखते, हम खुश कहाँ होते हैं, हम संतुष्ट कहाँ रहते हैं? अब क्या मैं इन संस्कारों से सत्युग में जाऊंगी? हालांकि सत्युग में हर चीज का बैलेंस होगा, बाबा कहते बच्चे वहां तो मौसम ही सदा बहार, तंग करने वाला नहीं होगा, लेकिन वो तब होगा सदा बहार जब मैंने अभी प्रकृति को योगदान दिया होगा। हम योग में बैठते हैं, हमारा लक्ष्य होना चाहिए आज मुझे एक घंटा इस प्रकृति को, पांचों तत्वों को योगदान देना है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, बार बार इनका शुक्रिया अदा करो। कई बार ये अखबारों में भी न्यूज आती है ना, सर्दियों में वो अंगीठी जला के सो गए, हीटर चला के सो गए, दरवाजे बंद थे, बस सोए के सोए रह गए, अंदर हवा ही नहीं आई, ऑक्सीजन नहीं आया, चले गए बस, और मुझे भगवान ने ये सब फ्री दिया है। आप हीटर पंखा चलाओ तो गवर्नमेंट हमें बिल भेजती है, भगवान इतनी ऑक्सीजन दे रहा है, शुक्रिया भगवान का भी, शुक्रिया इस ऑक्सीजन का भी जो मुझे नया प्राण दे रही है। हम ये शुक्रिया का अपना संस्कार बनाए। सत्युग में चलना है, किस किस को नहीं चलना है? अब हंस रहे हैं, समझ गए, उल्टा प्रश्न पूछ लिया बहन जी ने। तो जब सत्युग में चलना है, आप दिन में कितनी बार शुक्रिया करते हैं? अगर आपने मुझे चाय दी और वो गिलास या कप गंदा था और मैंने जरा सा देख लिया, कहेंगे देखो गंदे से कप में चाय दे दी, पियोगे? नहीं पियेंगे। हमें क्या नहीं चाहिए, हम हर चीज का शुक्रिया अदा करें। तो हम कई बार हंसते हैं, आप मान लीजिए मधुबन में आए हैं, भोजन कर रहे हैं, और किसी को कहा कि मेरे जरा सब्जी थोड़ी और ला दो रोटी, वो सब्जी या रोटी देता है ना कोई दूसरा व्यक्ति, हम कहते हैं थैंक यू। अरे आपने कहते हो ना थैंक यू, और घर में हमें चाहे वो युगल है, चाहे बहु बेटे हैं, बेटियां हैं, वो रोज हमें रोटी बना बना के खिलाते हैं, कभी थैंक यू कहा है? कौन कौन कहता है थैंक यू अपनी युगल को और बेटी को? है इक्का दुक्का। तो हमने एक बार अभियान चलाया था, आप अपने घर वालों को थैंक यू कहिए। हम ये आवाज तो लगा देते हैं, अरे मैं अपना टावल भूल आई देना, पर देने के बाद थैंक यू नो, क्यों? वो बेचारे का यही कसूर है ना, क्योंकि वो व्यक्ति मेरा अपना है, उसको हम थैंक यू नहीं कह सकते। कहते किस लिए थैंक यू? किसी के घर जाते हैं, चाय का कप पिलाया, उसको कहते हैं थैंक यू, और घर में वो लोग 10 बार पिलाते हैं नो थैंक यू। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। जो खजाने की बात है, मैं खजाना आशीर्वाद का खजाना जमा करूं, समय का खजाना मेरा तब सफल होगा। हर घड़ी मुझे ऐसा काम करना है, ऐसा बोल बोलना है जो मुझे सबसे दुआएं मिले, आशीर्वाद मिले। जैसा बीज बोएंगे वैसा फल पाएंगे। मैंने कभी किसी को थैंक यू कहा ही नहीं, अपनी अकड़ इतनी है, मेरा क्या जमा हो रहा है। अच्छा करते हुए भी, जैसे आजकल दुनिया में करते हैं ना, स्कूल खुलवाया, कंबल बंटवाए, वो उनका नाम पहले लग जाता है, फलाने ने कंबल बांटे, फलाने ने स्कूल खोला, उसका नाम पहले, तो वो तो बराबर हो गया। हम भी वही करते हैं। सेंटर पर भोग भी लगाएंगे ना, तो मेरे जो मिलने वाले होंगे, अपनी सहेली है, कोई दोस्त है, कोई कल गुरुवार है ना, जरूर आना, मेरी तरफ से भोग है। और फिर बहन जी ये ना मेरे मिलने वाले हैं, ये मेरा फ्रेंड है, इसको एक भोग और दे दीजिए घर के लिए। तो ये मेरा भोग था, बाबा का भोग था, ये तो समझ ही नहीं आया हमें। कितना मैंने अपने आप को डिटैच किया, कहां रहा गुप्त। ये सब बातें तब होंगी, इसके लिए दो बातें याद करनी है, और दो ही पुरुषार्थ, यूं तो बहुत हैं पर उन दो में सब आ जाएगा। आप देखिए बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, टीचर प्रोफेसर बनते हैं, आप में से भी कई होंगे, कितनी देर पढ़ते हैं, डॉक्टर बनने वाला कितनी देर पढ़ता है, MBBS करता है, 6-7 साल लगाता है, और रोज कितना पढ़ता है, इंजीनियर बनने के लिए कितना रोज पढ़ता है, वो बच्चा पहली क्लास वाला भी कितना पढ़ता है। चलो मैं तो ज्यादा पढ़ाई में होशियार नहीं थी, लेकिन तो भी कितना पढ़ते थे, ऐसा कि नहीं, क्योंकि आप कहेंगे हम तो बहन जी कभी चिंता ही नहीं की नंबरों की, आ गए बस पास हो जाते थे, लेकिन तो भी कितना पढ़ते थे, 6-7 घंटा स्कूल तो जाएंगे, 4-5 घंटा कॉलेज में तो जाएंगे। फिर घर आकर होमवर्क भी करेंगे, 2-3 घंटा उसमें भी लगाएंगे, एग्जाम होंगे तो जरा 4 घंटा ज्यादा भी पढ़ेंगे। तो अगर हम कुछ बनना चाहते हैं, कौन कौन सत्युग में चलना चाहते हैं, तो आप पक्के रहना, हम सत्युग में तब जाएंगे जब 12 घंटे रोज ज्ञान योग की पढ़ाई करेंगे। कौन कौन करेंगे 12 घंटा, मुश्किल नहीं है, आपस में बात नहीं करनी। तो एक तो मुझे रोज, क्योंकि क्या होता है योग में जाते हैं, मैं अभी 1 घंटा योग करूंगी, बैठे अभी 10 मिनट ही हुए, अच्छा चलो नहीं 1 घंटा करना, 3 बार देख लिया आधा घंटा ही हुआ है, अरे मैं तो थक गई चलो भाग गए, वो 1 घंटा तो हुआ ही नहीं, क्योंकि हमें अभ्यास नहीं है। मेरा योग न लगे चिंता ना करो, चाहे अव्यक्त चाहे साकार, मुरलियां लेके बैठे, मुझे अभी 2 घंटा एक बार में, अगर हम सिद्धि चाहते हैं तो एक बार में 2-2.5 घंटा एट ए स्ट्रेच मुझे पढ़ाई करनी है, जिसमें हमारा सवेरे का समय तो इतना अच्छा है, 4 से 6 योग करो, नहा के बैठो, इतना मन स्थिर होता है, इतना वातावरण अच्छा होता है, 3 बजे उठे तो वाह वाह भाग्यवान, नहीं अभ्यास है 3 बजे उठने का, कोई बात नहीं 4 बजे उठो, नहा धो के बैठो, 2 घंटा ज्ञान योग का अभ्यास, 2 घंटा भी मुझे ऐसी अपनी रूटीन फिक्स करनी है, 1-2 घंटा दिन में हम सोचेंगे ना योग करें, वो नहीं लगेगा, क्योंकि काम धाम करना है, जिम्मेवारी है, लेन देन है, मुरलियां पढ़ो, नोट्स बनाए मुरलियों के, हमने आगे भी बहुत बार बहुत सी क्लासेस में कहा था, टीचर्स बहनों को भी भाई बहनों को भी, अधिकतर भाई बहन ऐसे होंगे जिन्होंने मम्मा बाबा को नहीं देखा, और मुरलियां कितनी चली साकार, और अव्यक्त मुरलियां भी 69 से चालू और अंत कब तक थी 17 तक, मैंने कितनी मुरलियां पढ़ी हैं, कोई तो अभी 10 साल से ही ज्ञान में आए होंगे, कई तो आप में से 5 साल वाले होंगे, किस किस ने सारी मुरलियां पढ़ी हैं, कोई नहीं। अब मैंने सिलेबस पढ़ा ही नहीं, मैं पेपर में अपीयर कैसे हो सकती हूं बताइए, मैं क्या अटेम्प्ट करूंगी, क्वेश्चन कैसे करूंगी बताइए। इसलिए ये पक्का कर लीजिए, नहीं है अव्यक्त मुरलियों की किताबें, कम से कम 2000 तक की तो खरीद के ले जाओ, 69 से लेकर 2000 तक। आजकल तो 3 या 4 की रिवीजन चल ही रहा है, और उनको पढ़िए। आप 70 से लेकर के 90 तक की मुरलियां पढ़ के देखिए, नोट्स बनाइए, आपको लगेगा बाबा ने क्या क्या बताया है, याद करने के लिए बाबा ने क्या कहा है। बाबा मेरा है, बाबा ने एक मुरली में कहा है, बच्चे आप कहते हो बाबा मेरा है, कैसा है? गॉड इज ट्रुथ, सत्य स्वरूप, सत्य स्वरूप बाबा मेरा है। और मैं कैसी हूं? सारा टाइम झूठ, हेरा फेरी, तेरा मेरा। तो हुआ बाबा मेरा, जैसा बाबा है मेरा हर संकल्प। अभी तो कर्मों की बात छोड़िए, गया वो टाइम। अगर अभी हमें सत्युग में चलना है, फास्ट डीप पुरुषार्थ करना है, और अभी से भाव और भावना पे काम शुरू कर लीजिए इसी सेकंड से। मेरी तो अब सबके लिए शुभ भावना है, किसी के लिए भी हो सकता है मेरी किसी के साथ नहीं बनती है पिछले 3-4 साल से, वो मेरे से बोले ना बोले, मैं उसे कम से कम, कोई बात ही ऐसी हो गई मैं भी नहीं चाहती बोलना, कम से कम विद रिस्पेक्ट अगर वो सामने आए तो देख तो लो ना। ऐसे नहीं कोई आया सामने जैसे मैंने देखा ही नहीं, इतना लंबा चौड़ा व्यक्ति, अरे देखा कैसे नहीं। तो ये जो भावना है ना, ये टक्कर मारती है हमें, मेरी इससे बन, अच्छा ये काम वहां सेवा पर ये फलाना जाएगा, ठीक है बहन जी उसको भेज दीजिए, क्योंकि मेरी बनती नहीं है। अभी ये हमें खत्म करना है, नहीं तो सत्युग में कैसे जाएंगे आप बताइए। तो आज और अभी से मुझे सबके लिए, वो चाहे आपके लौकिक हैं चाहे अलौकिक हैं, ऐसे नहीं मेरे घर में तो मेरी बहू है ना, बाकी सब ठीक है, बाबा ने बहुत कुछ दिया है, पर हमारी बहू तो सुनती नहीं मानती नहीं। आज से आप यहीं से कहना शुरू कीजिए, मेरी बहू से अच्छा कोई नहीं है, हर बात मानती है, आप जाके देखना कितना परे। ऐसे नहीं अरे फिर ऐसा हो जाए, अरे वो ऐसा कर दे, अब मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है, मानता ही नहीं है, दोस्तों में ही पैसा उड़ाता रहता है। भाई हम जो भी रिश्तेदार बने हैं, जो भी हमारे संबंध हैं, ये हमारे कर्मों अनुसार है ना। एक है जो मेरा भाई बनता है, मेरी बहन बनती है, माँ बाप, ये सब क्या है? कर्मों अनुसार है। इसलिए दोष किसी को नहीं देना है, मुझे कैसे माँ बाप मिले, मेरे कर्मों अनुसार। गहरी बात है। कोई कोई कहते हैं हम तो इतने गरीब घर में पैदा हुए थे, ऐसा था वैसा था, मेरे कर्मों अनुसार। फिर हमने बड़ी मेहनतें की, अब हम कुछ बने, मेरे कर्मों का हिसाब। तो अब अगर मुझे अपना हिसाब किताब चुकता करना है, बस आज और अभी से सर्व के लिए शुभ। ये नहीं करता ये बहन जी, ये नहीं करती ये भाई, ऐसा नहीं करता। अरे एक बात बताऊं, आप और हम सब 84 जन्मों के रिश्तेदार हैं, एक जन्म के नहीं है, क्या विचार है? क्या विचार है? अब आप मुझे 84 जन्म रोज हर बार मिलते रहेंगे अलग अलग नाम रूप से, अब मैं तो आए दिन कभी इससे झगड़ा, उससे झगड़ा, उससे झगड़ा, ये तो बेकार, ये बेकार, अच्छा कौन है? इसलिए मीठे भाई बहनों, हम और आप सब 84 जन्मों के रिश्तेदार यहां इकट्ठे हुए, अभी से मीठा मीठा एक दूसरे को देखें, शुद्ध भाव। ये सब गीता पाठशालाएं, सब सेंटर, ये सब यहीं रह जाने हैं। मान लीजिए आज आपने क्लास सुना, आप कहेंगे बहन जी आपने तो बहुत अच्छा कराया। चलो ठीक है, कराने वाला तो वैसे बाबा है। बहन जी आपकी हम मुरली सुनते हैं, बहुत अच्छा सुनाते हैं। चलो वो भी बहुत अच्छा। अब ये आत्मा हम सब शरीर छोड़ के परम धाम में पहुंचते हैं, पहुंच जाओ परम धाम में। अब वहां जाकर मुझे कौन कौन पहचानेगा? हाथ उठाओ जो मुझे परम धाम में पहचानेंगे। ये क्या हुआ? अभी तो आप महिमा कर रहे थे बहन जी, आप बहुत अच्छे हैं, तो समझ गए ना। कोई किसी को परम धाम में, मैं हुई बिंदी आप भी बिंदी, वहां हम कैसे होंगे परम धाम में? मम्मा ने हमारी ने क्या अभ्यास किया? मम्मा कहती थी बस जब कुछ करना होता है तो मैं नीचे आती हूं, नहीं तो मैं परम धाम में ही रहती हूं बाबा के पास। ये अभ्यास हमारा चाहिए, मैं हर घड़ी बाबा के पास हूं। जब मेरा ये अभ्यास होगा ना, मैं हर घड़ी हर सेकंड बाबा के पास हूं। कई कई कहते हैं ना बहन जी क्या करें, पर हम तो बहुत ही तंग हैं अपने बेटे से, उसमें कुछ गलत आदतें हैं, ये है ठीक है, वो भी मेरा हिसाब किताब है। अब आप हर घड़ी बाबा के साथ रहिए, क्योंकि जिसके साथ रहेंगे, जिससे बात करेंगे, जिससे लेन देन करेंगे, हिसाब वहां जुड़ेगा, तो ये हिसाब कट होता जाएगा। ये ना सोचो बाबा ये सुधर जाए, बाबा ये, तो आप तो रोने का ही हिसाब बना रहे हो सारा टाइम, दुखी दुखी, बाबा ये ठीक हो जाए, बाबा ये नहीं। मेरा तो एक शिव बाबा, नहीं मन टिक रहा है ना, बोलिए जोर से बोलिए, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। तो चलते फिरते कर्म करते यही गाना गाओ, मेरा तो शिव बाबा एक, मैं बाबा की बाबा मेरा, मैं बाबा की बाबा, धुन लगाइए। बाबा कहता है, आप कहेंगे अब हमारी भक्ति तो है नहीं, वो राम राम वाली माला तो फेरनी नहीं है। नहीं, बाबा कह रहा है, मुरलियों में नहीं कहता है सिमर सिमर सुख पाओ, सिमरण करना है। जब पहले सिमरण करेंगे तब हमारे मन एकाग्र होगा। मुझे सारा दिन आज लाख बार ये कहना है, बाबा 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 बाबा, दो बार और चार बार नहीं कहना है, काम करते हुए बाबा आप मेरे साथी हैं, बाबा का आशीर्वाद का हाथ में। अब हमारा जो सिमरण है ना, ज्ञान सहित है, अर्थ सहित है, तब हमारे अंदर गुणों की धारणा अपने आप होती जाएगी। धारणा हमें करने में मुश्किल नहीं लगेगा। अभी तक तो हम सब ब्राह्मणों ने चार सब्जेक्ट है ना, ज्ञान योग धारणा और सेवा, हम ज्ञान में भी होशियार हैं, एक से अच्छा। मैं तो हमेशा कहती हूं मेरे से भी अच्छे क्लास कराने वाले भाई बहने हैं, भाषण करने वाले हैं, सेवा करने वाले हैं, लेकिन मेरे जैसा गुणवान कौन कौन है, मैं किस जैसी हूं ये देखे। मैं मीठा बोल सकती हूं, बोल सकता हूं, क्या भी हो जाए मीठा बोलना, मीठा। हमारे मम्मा बाबा, बाबा ने बाबा की जीवन कहानी फिर से पढ़िए, किनों किनों ने बाबा की जीवन कहानी वाली किताब पढ़ी हुई है, हाथ उठाओ तो देखो, कम है, भाइयों की तरफ तो बहुत ही कम है। ले लीजिए दो किताबें हैं बाबा की जीवन कहानी, उसको पढ़िए, बाबा ने क्या नहीं सहन किया। हम कहते हैं ना, मैं कब तक सहन करती रहूंगी, ये भाई तो है ही ऐसा, ये बहन तो माता है ही ऐसी, मैं कब तक सुनती रहूंगी। मम्मा बाबा ने कितना सहन किया, इसलिए कितना कह के थकना नहीं है। ये तो रास्ते में आए हुए, कहीं सड़क पे खड्डा है, कहीं कुछ है। आजकल गवर्नमेंट बहुत अच्छी अच्छी सड़कें बनाती हैं, तो भी आप देखो वो हाईवेज बने हुए हैं, आए दिन आप देख लो, कभी यहां डाइवर्शन, कभी वहां डाइवर्शन। बहुत मुश्किल होता है वो डाइवर्शन में, फिर एक के पीछे ही रेंगते रहो, धीरे धीरे चलो, कितना लंबा लंबा है। तो इसलिए अपने आप को ही मुझे अच्छा बनाना है। प्रेम दीदी थे ना, आप सब तो जानते हो, देहरादून वाले, वो हमेशा कहा करते थे, इस दुनिया में सब बहुत अच्छे हैं। हम कई बार कहते थे जब छोटे, दीदी ये देखो फलाने ने ऐसे किया ना, ये हुआ, तो दीदी एक ही बात कहती थी, सब अच्छे हैं तो एक मेरे सिवाय। अब हमारी उंगली तो कभी अंदर जाती नहीं है, जाती है, हम कहते देखो मैं इतनी अच्छी हूं, मैंने ये किया। बेहद प्रेम दीदी कहती थी नहीं, सब बहुत अच्छे हैं, ये हमारी अंदर से भावना, नो कंप्लेंट, सब बहुत अच्छे हैं एक मेरे सिवाय। तो अब सत्युग आया कि आया, अब हमें सत्युग में चलना है, हमारा सारा दिन का व्यवहार मनन चिंतन सत्युगी हो, तब हम कहेंगे हम गुणवान हैं। सब चलेंगे सत्युग में या नहीं चलेंगे? आपको पता है सत्युग की पॉपुलेशन कितनी है? इस पढ़ाई की रिजल्ट तो देखो, बाबा कहते हैं बच्चे 8 पास विद ऑनर, दुनिया की पॉपुलेशन देख लो और रेशो देख लो, कई भाई होंगे होशियार कॉमर्स वाले होंगे, कई उस वाले, निकाल लो मैथमेटिक्स के टीचर होंगे, क्या रेशो हुआ जी, अरबों की संख्या में 8। चलो और आगे बढ़ो, 108, कितना परसेंट? अब चलो और थोड़ा बढ़ो, 16,000, कहां टिक रहे हैं? तो हम आएंगे तो सही सब, लेकिन मेरा नंबर, जब हम लोग शुरू शुरू में ज्ञान में आए तो यही ज्ञान, कोई ज्ञान की उस समय इतनी गहराई नहीं थी, चित्र भी हमारे सामने, ये कल्प वृक्ष का चित्र हमारे सामने देखते देखते बना है, ना चित्र थे। अब तो कितने, जितने हमारे वो बने हुए हैं, विंग्स बने हुए हैं, हर एक की अपनी प्रदर्शनी है, पहले तो कुछ था ही नहीं, पर ये चर्चाएं होती थी, सत्युग में कैसे आएंगे, सत्युग में आने के लिए क्या चाहिए, हर घड़ी ये अंदर में चिंतन चलता था। अब आज से ये पक्का कर लीजिए, क्या पक्का करेंगे, सत्युग का चिंतन, अंत मति सो गति, ये भी रोज अभ्यास करना है। पहली बात हो गई थी, कोई शिकायत नहीं, किसी की शिकायत नहीं, हर घड़ी थैंक्स बाबा, थैंक्स एक दूसरे को दो, ये थैंक्स वाला तो आप प्रयोग करके देखो, आपको क्या आनंद आएगा। अगर किसी ने गाली भी निकाल दी ना, कहना नहीं माना, तो भी कहो थैंक यू, बहुत अच्छा, मेरे अंदर से थैंक यू निकले, ये थैंक यू का प्रयोग करके देखिए आप। और बस बाबा मेरा है, मैं बाबा के साथ, ऐसे नहीं बाबा भी सुनता नहीं है, मैं 3 दिन से भट्टी कर रही हूं, भट्टी तो 3 ही दिन से कर रही हूं, हिसाब किताब 84 जन्मों का है। तो इसलिए अभी तो मुझे हर पल पल बाबा को याद सिर्फ यहां से बोल के यहां से नहीं करना है। बहुत सी मुरलियों में बाबा ने कहा है, बाबा को कौन से बच्चे प्यारे हैं, दिल वाले या दिमाग वाले? दिल वाले। तो मैं बाबा को दिल से, भावनाओं से बाबा को याद करूं, जो कुछ भी है, हां बाबा शुक्रिया बाबा, बाबा आपने बहुत अच्छा सिखाया, बहुत अच्छा 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 कहेंगे, कौन कौन कहता है मैं आज से अच्छा अच्छा ही कहूंगी, किसी को खराब नहीं कहना है। जो हाथ नहीं उठा रहे, क्या प्रोग्राम है?
मम्मी दीदी जी आ गए
हैं,
मम्मी दीदी आ गए,
हाँ ठीक है आए। तो इसलिए हम बाबा के नंबर 1 अच्छे बच्चे हैं, हमें ही अच्छा बनना है, ठीक है ये बात, तब हम सत्युग में आएंगे, नो कंप्लेंट। अब हमारे बीच में आ रही हैं हमारी मुन्नी दीदी,